بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے آپ سب کو اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی جانب سے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. چنانچہ ہماری گفتگو آج کل نماز کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور آج ہم نے جو عنوان انتخاب کیا ہے پروگرام راہ نجات میں، وہ ہے نماز کے اثرات کے سلسلے میں. لیکن چونکہ نماز کے مختلف اثرات پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم علماء کرام سے سنتے ہیں اور مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آیات و روایات کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کے مختلف پہلو ہیں، پہلوؤں میں ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. آج ہم بات کریں گے کہ اس کے فردی آثار اور اثرات کیا ہے کہ جو ہماری زندگی پر مترتب ہو سکتے ہیں. اور اس خوبصورت سے موضوع پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے عالی جناب مولانا مشاہد عالم صاحب قبلہ کو، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز ایک بریک سے کرتے ہیں. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مشاہد عالم صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا اور ناظرین کی خدمت میں طرح سے سلام اور تحیت.
ضرور قبلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی ناظرین کی خدمت میں، کہ ہم آج آپ سے سننا چاہیں گے کہ نماز کے جو اثرات ہیں اور جو ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے، ناظرین نے بھی اسی طرح سے، کہ مختلف پہلوؤں پہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ نماز اثر انداز ہوتی ہے. اور آج ہم چاہیں گے کچھ فردی آثار کے بارے میں ہمیں بتائے کہ اس کے ذاتی ہماری جو نجی زندگی ہے اس پہ کیا اثر انداز نماز ہوتی بھی ہے یا نہیں. چونکہ بعض کا یہ خیال ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ظاہری طور پہ انہیں کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا کہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی وہ دیکھے، لیکن ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ واقعی اگر ہم واقعی معنوں میں نماز گزار ہیں اور نماز صحیح طریقے سے پڑھیں تو کیا اثرات اس کے ہماری زندگی پہ پڑ سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. نماز پڑھنے والوں کے اپنے اپنے الگ الگ خیالات ہیں، اور بعض چیزیں توجہ نہ ہونے کے ناطے سے اس کو آدمی نہیں سمجھ پاتا، حالانکہ کچھ چیزیں تو خود سامنے ہیں، انسان اگر ذرا سی توجہ کرے تو سمجھ سکتا ہے. خود نماز کے سلسلے سے یہ ایک اہم اشارے زندگی میں انسان کے مل سکتے ہیں اگر اس کے اوپر توجہ، کہ اللہ نے جو ہم پر نماز واجب قرار دی وہ ہمیں ظاہری طور پہ تو لگتا ہے کہ زحمت میں ڈال دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے انسان کی زندگی میں. کیوں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی فطرت، اس کی طینت، اس کی طبیعت میں اور اس کے نیچر میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرے اس ذات کی کہ جس کو وہ مانتا ہے اور اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے. اور نماز اس چیز اور اس جذبے اور اس ولولے کو جو انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے اس کو پورا کرتی ہے، اور بہترین انداز سے پورا کرتی ہے. خود نماز زندگی میں انسان کے ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اثر رکھتی ہے. ظاہری اثر نماز کا یہ ہے کہ نمازی اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کی وجہ سے مرتب اور منظم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک ڈسپلن پائی جاتی ہے.
بالکل،
یعنی نہ آگاہ اور لاشعوری طور پر وہ دیکھتا ہے کہ ہم مرتب اور منظم ہے. کیوں؟ کہ جب صبح کے وقت وہ جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم رات میں اتنے پہلے سو جائیں کہ ہم نماز صبح کے لیے اٹھ سکیں.
بالکل.
اور یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ جو نماز کے دائرے میں اسے مل جاتی ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو پیسہ دے تو وہ اس کو یہ کہے گا کہ تم جلدی سو اور جلدی اٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ جلدی سونا مفید ہے اور جلدی صبح کو اٹھنا مفید ہے. اور خود یہ بات نماز بلا کسی خرچ کے انجام دے کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ اگر تم نماز واقعی پڑھتے ہو یا کوئی پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہمیں پہلے. لہذا جو لوگ واقعی نماز کے پابند ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کام سے اپنے کو فارغ کر کے रात में जल्दी सो जाएं, और जब वो सोते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने का नतीजा ये होता है कि उमूमन लोग कहते हैं कि सुबह अगर उठ जाओ, ये उमूमन लोगों के दरमियान में ये बातें हैं, सुबह अगर उठ जाइए और ना सोइए तो वक्त में बहुत बरकत पैदा होती है।
बिल्कुल
और वाकईयत है,
वाकई
इसको हम लोगों ने भी
बिल्कुल
तजर्बा किया
बिल्कुल
है कि वाकया
बिल्कुल
अगर नमाज के बाद न सोया जाए और नमाज पढ़ करके रोज़मर्रा के काम शुरू कर दिए जाएं तो इंसान सारे काम वक्त के ऊपर निपटा लेता है और उसकी नमाज भी वक्त के ऊपर हो जाती
शायद
है।
इसीलिए कहा गया कि नमाज फजर के बाद जो है आफ्ताब तुलू होने तक सोना मकरूह है,
जी,
अगर नमाज
यानी
पढ़ने
एक वजह शायद ये हो
शायद हो
सकती है,
सकती है
और
हो
उसके
सकती है
अलावा वजह ये हैं कि जो कराहत है वो ये है कि उस वक्त रोज़ी तक़सीम होती है,
तकसीम होती है। बिल्कुल
मलाइका जो रोज़ी तक़सीम करते हैं उसी वक्त, लिहाजा ये कहा गया है कि बेहतर है कि इंसान नमाज सुबह के बाद ना सोए। और तन्हा रोज़ी सिर्फ यानी खाने और पीने की चीज़ से
चीज
मुताल्लिक़ नहीं
नहीं
है,
बिल्कुल
यानी
बिल्कुल
हर वो चीज़ के जिसको रोज़ी कहा जा सकता है इस दुनिया में और इंसान की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है वो चीज़, अल्लाह उस वक्त उसको अता करता है। तो नमाज के बाद जब वो नहीं सोता तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा मुस्तहक है कि उसको मिल जाए उसके निस्बत से जो सो गया। तो एक असर नमाज का ये है कि इंसान की ज़िंदगी में वो डिसिप्लिन पैदा करती, ये ज़ाहरी असर नमाज का है। और दूसरा असर नमाज का ये है कि नमाज इंसान को हिफ्जाने सेहत का ख्याल रखने को सिखाती है, यानी जिसे कहते हैं मेडिकल के एतबार से वो पाको पाकीज़ा रहता है, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखता है। आज दुनिया और हुकूमतें बड़ा पैसा खर्च करती हैं इसके ऊपर के हिफ्जाने सेहत का ख्याल रखा जाए, फार्मूले दिए जाते हैं और मीडिया को पैसे दिए जाते हैं, अखबारात में न जाने क्या क्या तबलीगात की
बिल्कुल
चीज़ें शाया
इश्तहारात किए
होती,
जाते हैं
इश्तहारात निकलते, सब कुछ
बिल्कुल
के ज़रा सा आदमी अपने को साफ़ सुथरा रखे। नमाज हमें खुद सिखाती है वुज़ू के ज़रिए से, गुस्ल के ज़रिए से, तयम्मुम के ज़रिए से कि अगर तुम नमाज़ पढ़ते हो तो तुम्हें नमाज में पाकीज़गी का ख्याल रखना होगा। तो एक दूसरी सिफत जो नमाज के अंदर है और जो असर है नमाज का हमारी ज़िंदगी के ऊपर वो ये है कि नमाज हमें पाकीज़ा बनाती है, ताहिर बनाती है, और ये नमाज हमारी तहारत का सबब है, ये ज़ाहरी और इसी तरह से बातनी तहारत का सबब है।
सही
क्यों? इसलिए कि इंसान बहरहाल गफलत की वजह से, अपनी ख्वाहिशात से मغلوب होने की वजह से, या बुराइयों में या बुरे बुरे समाज में फंस जाने की वजह से गलतियां कर बैठता है, इश्तबाहात कर बैठता है। परवरदगार कहता है कि अगर किसी के अंदर और किसी ने गुनाह कर किया है और बुराइयां अंजाम दी हैं और वो गुनाह कबीरा नहीं है जिसको इस्लाम ने बताया है, वो हमारा यहाँ मौजू नहीं है, छोटे गुनाह हैं, तो खुद नमाज के अंदर ये सिफत पाई जाती है कि छोटे छोटे गुनाहों को वो खुद ब खुद ख़त्म कर देती है। इरशाद होता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, सय्यात यानी इशारा है छोटे छोटे गुनाह की तरफ, यानी और हसनात ये नाम है खुद नमाज का,
नमाज का
यानी कुरान में नमाज के तकरीबन 10 नाम हैं, उसमें से एक नाम हसनात है,
हसना
यानी नमाजें, हमारी नमाजें बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। वाकया भी है पैगंबर के ज़माने में कि वहाँ के ऊपर बताया गया है कि एक शख्स है और वो नमाज़ पढ़ता है पैगंबर के पीछे, वो एक जवान है और उमूमन पैगंबर के पीछे नमाज़ पढ़ना को वो तरजीह देता है, आता है नमाज़ पढ़ता है, लेकिन देखा गया कि वो गुनाह भी करता है, बुराइयों में भी वो फंसा
मुबतला
हुआ है, मुब्तला है। तो बादशाह साहब ने आके पैगंबर से कहा कि या रसूल अल्लाह, वो जो जवान नमाज़ पढ़ता है आपके पीछे वो तो अजीब व गरीब है, नमाज़ भी पढ़ता है और गुनाह भी करता है। तो पैगंबर ने अजीब बात फरमाई, कहने लगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये नमाज उसके ऊपर असर डालेगी और उसे एक न एक दिन गुनाहों से नजात दे देगी। और यही हुआ कि वो पैगंबर के पीछे नमाज़ पढ़ते पढ़ते एक दिन मुतवज्जे हुआ कि मैं बहुत गलत करता हूँ, नमाज़ भी पढ़ता हूँ उसके बाद बुराई भी करता हूँ, नमाज़ भी पढ़ता हूँ उसके बाद गुनाह भी करता हूँ, ये कैसे हो सकता है? उसके ज़मीर ने उसको झंझोड़ा, उसके ज़मीर ने उसकी मलामत की, उसके बाद वो मुतवज्जे हुआ, उसने तौबा कर ली और आखिरकार
बिल्कुल
वो गुनाहों से
नसीब
दूर हो गया। किसको
बिल्कुल
कहते हैं जो तौबा कहेगी गुनाह से? वो यही है कि इंसान अगर गुनाह करे तो उसके बाद वो ये तय कर ले कि फिर आइंदा हम ऐसा नहीं
नहीं
करेंगे।
करेगा।
लिहाजा मैं यहाँ के ऊपर इशारा कर दूँ तस्बीह के बारे में, जो नमाज के बाद हम पढ़ते हैं, कि पहले हम अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा,
मतलब
और फिर सुबहान अल्लाह। ये ताकीबात नमाज और वज़ायफ़ नमाज में से एक बेहतरीन और अफजल तरीन अमाल में से। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हदीसों में है कि जब बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो हर अल्लाह अकबर के ज़िक्र पर जन्नत में उसके लिए एक दरख्त तैयार होता है। इसी तरह जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसके ऊपर एक दरख्त तैयार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जब सुबहान अल्लाह कहता है तो उसके ऊपर भी एक दरख्त, यहाँ तक कि बाग उसके लिए तैयार हो जाता है। तो जब ये पैगंबर ने हदीस फरमाई कि हदीस के अंदर ये, अब ये तस्बीह के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है, उसके ज़रिए जन्नत में बाग तैयार हो जाता है, बल्कि बागात तैयार होते हैं, तो सब लोगों ने कहा कि या रसूल, फिर तो हमारे लिए बहुत बाग जन्नत में तैयार हो चुके होंगे। तो पैगंबर ने फौरन फरमाया, मगर हाँ याद रखो कि उस तस्बीह के बाद तुम उसके लिए आग ना भेज दो कि जो
बिल्कुल
तुम्हारे बाग को खाकिस्तर कर दे। तो कहा, या रसूल, वो आग क्या है? कहा, तुम्हारे गुनाह। तो
सुभान
हमें समझना
अल्लाह,
चाहिए
बिल्कुल
कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छे अमाल अंजाम देने के बाद फिर
फिर
माद अल्लाह खुदा न
नजर
खास्ता गुनाहों में मुलव्वस हो जाएं, उसके बाद वो गुनाह की आग जा करके हमारे नेक अमाल को जला
जला
दे,
देगी।
ख़त्म करे, कि हम खाली मुंतजिर रह जाएं कि उस अमाल की जज़ा हमको मिले, जबकि वो अमाल है ही नहीं
नहीं,
और ख़त्म हो चुके हैं।
बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। अगर इजाज़त दें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, बहुत ही अहम गुफ्तगू हो रही है आली जना मौलाना मुशाहिद आलम साहब क़िबला के साथ। नमाज के फ़र्दी और ज़ाती असरात के बारे में गुफ्तगू हो रही है। यहाँ पे वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है। आइए हमारा साथ दीजिए, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी क़िबला, आप ये असरात के सिलसिले में बयान फरमा रहे थे।
जो आसार नमाज हैं इन इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, उसमें से एक असर जो बहुत अहम असर भी है और कुरान मजीद की ताकीद है, अहादीस में भी है, उसके सिलसिले में इससे पहले हमने आयत भी पढ़ी है, वो ये कि नमाज इंसान को खुद बुराइयों से रोकती है। कुरान
सही,
मजीद का इरशाद है, इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वला जिक्रुल्लाह अकबर। नमाज इंसान को फहशा, मुनकरात, बुराइयों से और गलत बातों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र सबसे बुजुर्ग और बरतर है। इस ज़िम्न में पैगंबर अकरम की एक हदीस मैं यहाँ के ऊपर बयान करना चाहता हूँ, कि आप फरमाते हैं कि जिसकी नमाज उसे बुराइयों से ना रोके, खुदा से दूरी के अलावा वो उसे कुछ नहीं हासिल हो सकता। यानी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और वो नमाज उसके लिए बुराइयों से दूरी का सबब नहीं बन रही है, तो गोया वो अल्लाह से धीरे धीरे दूर हो रहा है। लिहाजा नमाज पढ़ें, वो जो पहले आपने सवाल किया, इसी में इसको हम इस पस मंज़र में देख सकते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो खुद ब खुद हमें बुराइयों से दूर होना चाहिए। अब अगर खुदा ना खास्ता बुराई हो गई है तो हमें मायूस भी होने की ज़रूरत नहीं, हम फिर दोबारा नमाज की तरफ आएँ, नमाज पढ़ें और अल्लाह से लो लगाएं। और बहुत सी हदीसें हैं कि जिसमें ये बात हमें कही गई है कि तुम्हारी नमाज की ये सिफत होना चाहिए कि तुम नमाज जब पढ़ो तो धीरे धीरे तुम बुराइयों से दूर हो जाओ, और जितना तुम बुराइयों से दूर होते जाओगे उतना तुम यकीन कर लो कि तुम्हारी नमाज कामिल होती जा रही है, वो नमाज जो अल्लाह ने चाही है, पैगंबर ने चाही है, आइम्मा ने हमसे चाही है,
बिल्कुल
गोया वो नमाज हम अदा कर रहे हैं, उसी नमाज को हम पढ़
पढ़
रहे
रहे हैं,
हैं। लिहाजा ये एक असर नमाज का है कि वो हमें बुराइयों से रोकती है, हमें बुराइयों की तरफ जाने नहीं देती। बाज़ लोग हैं ये मसलन, ये अवामुन्नास में ये बात कभी कभी आती है और यूं ही कह जाते हैं कि वो फ़लानी भी तो नमाज़ पढ़ते हैं मगर फ़लां काम भी तो करते हैं।
बिल्कुल
नहीं, इस ये
कहते हैं
बहाना है, फ़लां अगर नमाज़ पढ़ता है और गलत काम करता है तो वो गलती उसी के हक़ में तमाम होगी,
बिल्कुल, आपके लिए जवाज नहीं बनता कि आप
जवाज़
वो
नहीं बन
बनता है
सकता।
क्या।
ये बिल्कुल ऐसे ही कहना है कि जैसे ये कहा जाए कि फुलां खाना खाते हैं तो हम क्यों खाना खाएं, इस तरह से कहना चाहिए। हालांकि कोई ऐसे नहीं
नहीं
कहता,
कहता,
फुलां मसलन इस पोस्ट और मनसब के ऊपर हैं तो मैं क्यों जाऊं, ऐसा कोई नहीं कहता। कहते नहीं, अगर वो पहुंचे तो मुझे भी पहुंचना चाहिए, मैं भी मेहनत कर सकता हूं। तो यहाँ के ऊपर कोई चीज़ जवाज़ नहीं बन सकती, यानी गलत काम किसी की गलती के लिए जवाज़ नहीं बन सकता, यानी ये फिक्र गलत है, ये अंदाज़ तफक्कुर गलत है, इस अंदाज़ फिक्र को बदलना चाहिए, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। और एक दूसरी सिफत जो नमाज में, वो ये है कि नमाज खुद बेहतरीन मददगार और मुआविन है इस दुनिया में इंसान इंसान के लिए, यानी इंसान की मदद करती है नमाज, बुरे वक्त में ये नमाज काम आती है,
आते हैं
यानी इस नमाज का एक चेहरा है, और वो चेहरा ये है कि जब भी इंसान मुश्किलात में फंसता है तो यही नमाज उसके लिए जरिए नजात बन जाती है। छठे इमाम एक जगह फरमाते हैं, यानी हमें तशवीक करते हुए इस सिलसिले में, कि जब भी तुम पर गम, अंदोह,
सही
रंजीदगी तारी हो और दुनिया की मुश्किलात तुम्हें घेरें, तो तुम वुज़ू करके दाखिले मस्जिद हो जाओ और 2 रकत नमाज पढ़ करके दुआ करो। क्या तुमने नहीं सुना है अल्लाह का ये कौल कि इरशाद फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह वालो, तुम नमाज और रोज़े के ज़रिए से अल्लाह से मदद तलब करो। यानी खुद आइम्मा हमें तालीम दे रहे हैं कि जब दुनिया में कोई मुश्किल तुम्हें पेश आ जाए तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास जरिया है नजात का, तुम्हारे पास एक मददगार चीज़ है और वो है नमाज। नमाज से तुम मदद मांगो, फौरन वुज़ू करो, फौरन नमाज के लिए तैयार हो जाओ। और हमारे आइम्मा की भी ये सीरत रही है कि मुश्किलात जब भी उनके सामने आई तो फौरन उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ा और उसमें अल्लाह से उन्होंने दुआ की। और ये खुद एक बेहतरीन सबक है एक मोमिन के लिए कि जहाँ कोई उसे नजात नहीं दे सकता, कोई
नमाज
उसका मददगार साबित नहीं हो सकता, वो नमाज। और इसमें कैद भी नहीं है कि क़िबले की तरफ खड़ा हो, नमाज मुस्तहबी नमाज
मुस्तहब
जो है
नमाज है
वो
बिल्कुल
कहीं भी, यानी ये वो नमाज है जो हर जगह हमारी मदद कर सकते, क्योंकि कुरान मजीद का इरशाद है, अइनमा तुअल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर तुम रुख करोगे उधर परवरदिगार का समत है, उसकी सू है, उसकी जहत है, जिधर भी रुख करो परवरदिगार की तरफ तुम मुतवज्जो हो सकते हो। सिर्फ नमाज वाजिब के लिए शर्त है क़िबले की, लेकिन मुस्तहबी नमाज के लिए कोई शर्त नहीं। लिहाजा हम रास्ते में जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में हैं, जहाज़ में हैं, और मुश्किल पेश आ गई, फौरन वुज़ू किया वहीं के ऊपर बैठे बैठे, वुज़ू वाजिब, फ़कत चेहरा धुला, उसके बाद दोनों हाथों को, उसके बाद मसा
मसा
कर
कर
लिया,
लिया
और वहीं बैठे बैठे। क्यों? इसलिए कि मुस्तहबी नमाज के लिए न क़िबले की शर्त है, न खड़े होकर के नमाज पढ़ने की शर्त है, कुछ नहीं। हालत हरकत में भी पढ़ सकता है, बैठ के भी पढ़ सकता है, रास्ता चलते चलते पढ़ सकता है। लिहाजा अल्लामा तबातबाई साहिब तफसीर अलमीज़ान, जिसका मैंने तذکرہ किया, जिनका और
सही
दीगर बुजुर्गान के बारे में है कि अक्सर व बेशतर उस वक्त के जब ये सवारियां नहीं थी आजकल की, मतलब टैक्सी वगैरह नहीं थी, तो ये लोग पैदल चलते थे या घोड़े वगैरह पे, खच्चर वगैरह पे चलते थे। तो अगर जब इनको लोग सलाम करते थे तो उमूमन सलाम का जवाब वो फ़कत कहते सलामुन अलैकुम। तो बाद में लोगों ने पूछा, ये आप ये ऐसा क्यों जवाब देते, ये असलन मुतवज्जे नहीं होते थे। तो बाद में पता चला कि वो हालते नमाज
नमाज
में
में
हुआ
है
करते थे।
बिल्कुल
क्यों? इसलिए कि नमाज एक बेहतरीन चीज़ है, जितना चाहे आदमी पढ़े। लिहाजा नमाज तन्हाइयों में मुनिस और हमदम
मुसम्मल
है,
है
बेहतरीन
मददगार है
दोस्त
उसकी
है, बेहतरीन साथी है, बेहतरीन मददगार है। और अगर कोई इस जिहत से नमाज को देखे तो कभी भी नमाज से फ़ायदा उठा सकता है।
और ये अहम नुक्ता है जो आपने सीरत अम्बिया ये आईम मासूमिन की तरफ इशारा फरमाया कि वो भी नमाज से मदद लेते थे यानी मुआविन और
जी,
मददगार के
यानी
तौर
यहाँ पे
पे
मैं इस तरह इस बात को कह सकता हूँ कि वो नबी जो खुद अल्लाह की जानिब से
जब
हमारी
से
हिदायत के
हिदायत
लिए
के लिए
आया है,
आए
मददगार बन करके आया है दीन और दुनिया में, वो खुद जब मदद अल्लाह से हासिल करना चाहता है तो नमाज के ज़रिए। क्यों? एक हदीस में है कि नमाज रास्ता है नबियों को अल्लाह तक पहुँचने का या पहुँचाने का, यानी अम्बिया अगर अल्लाह तक पहुँचना चाहते हैं तो नमाज को ज़रिया बनाते हैं। मौलाए कायनात के सिलसिले से है, पैगंबर के सिलसिले से है कि वो जब भी गम व अंदोह में मुब्तला होते थे तो मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ते थे, नमाज में अपनी तस्कीन तलाश करते थे, अपना सुकून तलाश करते थे। और हकीकत है, यानी इस दुनिया में कोई चीज़ इंसान को दायमी सुकून नहीं दे सकती, इसको इंसान तजर्बा कर सकता है, ना माल, ना औलाद,
औलाद
نہ بال بچے
بالکل
نہ منصب نہ پیسہ نہ عموماً زندگی کی جو سہولیات ہیں، یہ دائمی سکون انسان کو نہیں دے سکتے. اگر دائمی سکون کوئی چیز انسان کو دے سکتا ہے
تو
وہ نماز ہے، وہ ہے معنویات، وہ ہے روحی چیزیں، کہ جس کا اسلام میں بھرپور طریقے سے خیال کیا گیا ہے کہ انسان کو صرف چاہیے کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرے، اس کے بارے میں چاہیے کہ صحیح اطلاعات حاصل کرے. اور اگر اسے وہ معلومات حاصل ہو جائے تو وہ خود احساس کرے گا کہ دل کے اعتبار سے اس کے اندر کتنی توانگری، کتنی غناعت پائی جاتی ہے، کس قدر وہ مالدار اور ثروت مند ہے. اور یہی حال ہے محبت اہل بیت کا.
صحیح بجا فرما
کہ اگر محبت اہل بیت واقعاً کسی کے پاس ہے، رسول خدا اور ان کی اولاد کی محبت ہے، تو دنیا میں اس سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہے، اس سے مالدار کوئی نہیں،
ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، بہت ہی اہم اور مفید مطالب تھے. امید ہے ہمارے ناظرین کو پسند آئے ہوں گے. چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ کے بھی شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا اور ہماری گفتگو سنی. امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.